ये आकाशवाणी है, अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। भारत और चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त शुरू कर दी है। सेना के सूत्रों के अनुसार डेमचोक क्षेत्र में गश्त शुरू हो गई है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच अप्रैल 2020 में हुई झड़प के बाद इस क्षेत्र में गश्त बंद हो गई थी और करीब 4.5 वर्ष के बाद दोबारा शुरू हुई है। देवसांग में भी सैनिकों की गश्त जल्द शुरू होगी। पिछले महीने राजनयिक और सैन्य स्तर की वार्ताओं के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बन गई थी। सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुई थी। दोनों सेनाओं ने देवसांग और डेमचोक क्षेत्रों से अस्थायी टेंटों और संरचनाओं को हटा दिया था। योजना के अनुसार भारत और चीन दोनों ने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त से पहले एक दूसरे को इसकी जानकारी देने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठे वायदे करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आरोप लगाया कि देश भर में ये महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस को वोट देने का अर्थ है कुशासन, खराब अर्थव्यवस्था और असाधारण लूट का समर्थन करना। उन्होंने कहा कि लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, न कि कांग्रेस के घिसे पिटे पुराने वायदे। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को कांग्रेस प्रायोजित झूठे वायदे की संस्कृति के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के झूठे वायदे का पर्दाफाश किया और एक स्थिर, प्रगतिशील और कार्य संचालित सरकार के लिए मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य विधानसभा चुनाव से पहले इस महीने की 8 तारीख को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे धुले में एक रैली के जरिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी का चुनाव प्रचार के लिए अन्य स्थानों पर भी जाने का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार 22 लाख से अधिक मतदाता 18 से 19 वर्ष के हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। इस दिन कुल 9,70,25,119 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने का कल आखिरी दिन था। इस चरण में 634 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। राज्य में पहले चरण में नामांकन वापस लेने के बाद कुल 683 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रांची क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। रेलवे द्वारा छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा और सुगम सफर के लिए विशेष रेलगाड़ियां परिचालित की जा रही हैं। उत्तर रेलवे द्वारा राजधानी दिल्ली में आनंद विहार, नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से इन विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि उत्तर रेलवे द्वारा लगभग 140 रेलगाड़ी दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से परिचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने प्रदेश की स्वर्णिम यात्रा में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के चेहरे पर मुस्कान, किसानों की समृद्धि, महिलाओं का सम्मान और युवाओं का उज्जवल भविष्य हमारे प्रयासों का मूल उद्देश्य है। उन्होंने दोहराया कि जन कल्याण की दिशा में हमारे प्रयास जारी रहेंगे। पुडुचेरी में पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ तथा लक्षद्वीप सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। राजभवन में कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल के कैलाश नाथन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुडुचेरी न केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में बल्कि एक प्रगतिशील आधुनिक राज्य के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में पुडुचेरी एक मिनी इंडिया जैसा होगा। नेपाल सरकार ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2024 में प्रथम उपविजेता नेपाल टीम के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।